सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरहे नश्रप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। आज हम श्रीमद् भागवत जो दशम स्कंद है उसमें विशेष कृष्ण बलराम श्रीमती राधा रानी गोपियां इनके लीला वर्णित है। तो इसकी शुरुआत जो है जैसे कि देवता द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति है। तो बलराम जी के बारे में भागवत में एक श्लोक वर्णित है तो कहता है कि गर्भ संकर्षणात्तैव प्राहुर संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणान् बलभद्रं बलोच्चया। गर्भ संकर्षणात्तं वै प्राहुर संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणा बलभद्रं बलोच्छदया। गर्भ संकर्षणात्तं वै प्राहुर संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणा बलभद्रं बलोच्चया। गर्भ संकर्षणात् देवकी के गर्भ से निकलकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाने जाने के कारण तम उनको रोहिणी नंदन को वही निस्संदेह प्राहु लोग कहेंगे संकर्षणम संकर्षण नाम से भुवि संसार में राम इति श्री राम कहलाएगा। रोक रमणाद लोगों को भक्त बनने में समर्थ बनाने के बलभद्रम श्री बलभद्र कहलाएगा। बल उच्चयात प्रचुर बल के कारण देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण भी कहलाएगा। वह गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण श्रीराम कहलाएगा और अपनी प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण बलभद्र कहेगा। तात्पर्य मिश्र प्रभुपाद लिखते हैं कि बलराम को संकर्षण बलराम या कभी कभी राम नाम से विख्यात होने के ये कुछ कारण है। महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं जब राम को श्री बलराम कहा जाता है तो कुछ लोग आपत्ति करते हैं। भले ही भगवान श्री राम के भक्तों को इसमें आपत्ति हो किंतु बलराम तथा भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवतम के इस स्थल में बलराम को भी राम कहा गया है रामेति। अतः भगवान बलराम को भगवान राम कहना बनावटी नहीं है। जयदेव गोस्वामी ने भी तीन रामों का उल्लेख किया है परशुराम रघुपति राम तथा बलराम। ये सभी राम है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुद्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज इस साल का एक महत्वपूर्ण दिन है कि जिस दिन हम बलराम जी का जन्म महोत्सव मना रहे हैं। तो बलराम जी जो है इनकी एक साधक के जीवन में क्या महानता है उस विषय के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे और साथ साथ उनकी जो लीला है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये जो दशम स्कंद है उसकी शुरुआत इस प्रकार से होती है कि वास्तविक कंस जो है बहुत अत्याचारी रहता है और जब से वो एक आकाशवाणी सुनता है कि इस देवकी का आठवां पुत्र उसके वध का कारण होगा उसके बाद उसका सारा व्यवहार जो है बदल जाता है। हालांकि जिस देवकी जो उसकी बहन है उसको बड़े प्रेम से वो अपने ससुराल भेज रहा था और उसके लिए उस रथ को भी हाँक रहा था खुद अपने स्वयं हाथों से। वास्तविक देखा जाए तो कंस जैसे इतने अहंकारी व्यक्ति को एक सारथी बनना ये इतना आसान नहीं था, मगर फिर भी एक बहन के प्रति स्नेह होने के कारण उन्होंने वो भी स्वीकार कर लिया। मगर जैसे ही ये आकाशवाणी सुनाई देती है कंस के सारे रंग जो है बदल जाते हैं और उनका विशेष दानवी प्रवृत्ति है वो प्रकट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब कोई विपत्ति आए कोई संकट आए उस समय आपका अंतरंग जो है दुनिया को देख सकता है, यानी विपत्ति के समय आपका स्वी स्वभाव जो है वो प्रकट हो जाएगा। हालांकि बाहरी रूप से कम से बहुत कुछ अच्छा व्यवहार कर रहा था मगर जैसे ही ये समझ में आता है तो सारे उसके भाव जो है बदल जाते हैं, प्रेम के जगह क्रोध निर्माण होता है और उसी विवाह के दिन पर हाथ में तलवार लेकर वो देवकी की हत्या करना चाहता और उसके बाद में वसुदेव जो है तत्वज्ञान से उसको समझाने का प्रयास करते हैं मगर कंस जो है वो तत्वज्ञान क्या समझेगा, मगर जो व्यवहार है वो समझता है कि जब भी वासुदेव देखते हैं कि इसमें तत्वज्ञान का कोई परिणाम नहीं हो रहा है तो उस समय उनको लगता है कि ये देवान घेवान की भाषा समझ सकता है कि आपको ये पता है कि इसके आठवें पुत्र से आपकी हत्या होने वाली, जैसे ही हमारा कोई पुत्र जन्म लेता है मैं तुरंत उनको आपके हवाले सादर करूंगा। तो उस समय वासुदेव की इतनी प्रख्यात कीर्ति थी कि सत्यवचनी यानी एक बार अगर मुंह से कुछ वचन निकल गया तो उसका पालन करेंगे, भरे अपना जीवन संकट में आए, अपने प्राण को त्यागना पड़े, फिर भी वचन जो है वो बदला नहीं जाता था। तो एक जमाने भारतवर्ष में इस प्रकार से राजर्षि परंपरा थे कि जो शब्द दिया उसका पालन करते थे, भले कितना ही कठिन परिस्थिति क्यों न हो। और ये जो है कंस जानता था कि अगर इसने एक बार वचन दिया है तो जरूर इस वचन का पालन करेगा। मगर कंस जो है, क्या वो अपने वचनों का पालन करता था? नहीं। कंस का क्या रहता था कि जैसे उसके दोस्त लोग कहेंगे उसी प्रकार से वो बर्ताव करेगा। हालांकि एक वचन कर देगा, एक बार बोलेगा कि मैं आपके पुत्र जो है आप वापस ले जाइए, क्योंकि मेरा तो आठवें पुत्र से वैर है, इससे तो वैर नहीं है। मगर ये जो बात है कुछ ही क्षण के अंदर उसको बदल देता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर व्यक्ति के इंद्रिय अगर संयमित नहीं है, यानी कि मन संयमित नहीं है, तो हम अपने जीवन का जो उद्दिष्ट है, मतलब जीवन में कुछ भी सफलता प्राप्त करने में यशस्वी नहीं हो सकते। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का जो लीला है, हालांकि भगवान का प्रकट्यकरण अपने को समझना बहुत आवश्यक है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो अपने इच्छा के अनुसार भक्तों के साथ प्रेम का व्यवहार करने के लिए इस भूलोक पर प्रकट होते हैं। और हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति है, जब हम लोग इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो वो हमारे कर्म के अनुसार होता है, और हमको जो है उसमें कोई स्वाधीनता नहीं रहती कि हम अपने कर्म को बदल नहीं सकते। कर्म के अनुसार जो भी दुख भोगना है, जो भी सुख भोगना है, उसको भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की तैयारी हो रही थी तो उस समय देवकी के पहले छह पुत्रों का वध हो जाता है, फिर सातवां पुत्र जब देवकी के मत यानी के शंकरषण बलदेव जी जब देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं, उस समय देवकी का जो सौंदर्य है अलौकिक हो जाता है। हालांकि वो एक राजकन्या, एक रानी, बहुत सुंदर उसका रूप था, मगर जब वो गर्भवती होती है और गर्भ के अंदर जब भगवान शंकरषण प्रवेश करते हैं तो उनका सौंदर्य जो शब्द में वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे अलौकिक हो जाता है। और वही वार्ता समझकर कंस बहुत भयभीत हो जाता है। तो उस समय योग माया जो है उसको आदेश दिया जाता है भगवान से कि आप इस देवकी का गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थलांतरित कर दीजिए। और फिर बलदेव जी जो है वो रोहिणी के गर्भ में प्रकट हो जाते हैं और वहां से इस लीला में प्रवेश करते हैं। तो आज के इस पूर्णिमा के दिन के ऊपर जो है बलदेव जी इस भूलोक पर जो गोकुल में महावन में जो गोकुल है वहां पर प्रकट होते हैं। तो उनका मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि जब ही देवकी के गर्भ से जो छह पुत्र निकलते हैं तो उसके बाद अभी भगवान कृष्ण आठवें अपत्य के रूप में प्रकट होने वाले हैं, तो उस समय देवकी का गर्भ जो है वो पवित्र हो जाए। तो उसके तैयारी के लिए बलदेव जी जो है प्रकट होते हैं। और बलदेव जी का शास्त्र वर्णन करते हैं वैभव प्रकाश ने कृष्ण के समान ही उनका सामर्थ्य रहता है। तो शास्त्र वर्णन करते कि केवल एक वर्ण भेद उसका मतलब क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वह वर्षाकालीन बादल के समान रहते हैं, यानी काले रंग के रहते हैं, और बलदेव जी जो है वो शरतकालीन जो मेघ होते हैं बहुत सफेद शुभ्र होते हैं उस प्रकार से है, और उनके शक्तियों में अंतर नहीं है, मगर बलदेव जी जो है उनका प्राकट्य का मुख्य विषय रहता है कि कैसे मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करूं। तो ये जो है मुख्य उनका उद्दिष्ट है। तो इस प्रकार से जब भगवान को अपनी आध्यात्मिक लीला का आस्वादन करना है तो सबसे प्रथम उनका जो विस्तारित स्वयं रूप जो है वो बलदेव जी होते। तो उसमें जिस प्रकार से ये श्लोक में कहा गया है कि उनका एक शंकरशन नाम होगा, बलराम नाम होगा, बलभद्र नाम होगा, तो ऐसे गोपाल चंपू में लिखा गया है कि ये जो है बहुत अलौकिक ऐसा बालक है, ये साधारण बालक नहीं है। हालांकि भारतवर्ष में प्रथा है कि जैसे ही बालक का जन्म होता है तो महान ज्योतिष वहां आते हैं और उसकी जन्म पत्रिका बनाते हैं और साथ साथ भविष्य में किस प्रकार से वर्ताव करेगा वो भी माता पिता को बताते हैं। तो उस जमाने के जो ज्योतिष शास्त्र के लोग थे वो बहुत अच्छी तरह से और कोई मिस्टेक किए बिना भविष्य बताते थे। तो उन्होंने बताया कि ये जो है एक महान अलौकिक है, साधारण बालक नहीं है, और ये प्रकट होकर अनेक असुरों का नाश करेंगे, साथ साथ प्रलम्बासुर है उसका भी वध करेंगे, और इनका नाम है कि बलराम, यानी नाम में उनके राम है मगर राम के जो संगी है द्रिविड़ उसका ये वध कर देंगे। और हालांकि ये स्वयं धेनु का पालन करते हैं, धेनु के पालक है, फिर भी ये धेनुकासुर के ये जो दानव है उस दानव का वो वध करेंगे। तो उसमें कहा गया है कि केवल इसमें वर्ण भेद है, यानी कि शरतकालीन जो मेघ है उस समान इनका वर्ण रहेगा और ये एक बहुत बड़े दिव्य बालक है। तो जैसे हमने देखा कि केवल कृष्ण की सेवा करना है, यही जो है बलराम जी का मुख्य उद्देश्य है, तो उसमें वो अपने आप को कैसे विस्तारित करते हैं, तो जैसे पांच रस हम सब जानते हैं कि एक शांत रस होता है, दास्य रस होता है, साख्य रस है, वात्सल्य रस है और माधुर्य रस है। तो बलराम जी इन पांचों रस में अपने आप को विस्तारित करके कृष्ण को आध्यात्मिक आनंद देते हैं, उनके लीला में सहायता करते हैं। तभी शांत रस में क्या होता है तो गोलोक वृंदावन की निर्मिति होती है। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण जो भी मुकुट पहनते हैं, जो भी चप्पल पहनते हैं, जो भी उनकी बांसुरी है, जो भी उनके वस्त्र है, जो भी उनके अलंकार है, इस सभी रूप में वो अपने आप को विस्तारित करते हैं और भगवान की लीला में सहायता करते हैं। तो ये हुआ शांत रस से बलराम जी का श्री कृष्ण के प्रति सेवा। उसके बाद में दास्य रस, यानी हालांकि वो बड़े भाई के रूप में प्रकट होते हैं मगर कभी कभी जो है अपने छोटे भाई की भी बहुत अच्छी तरह से सेवा करते थे। जैसे अगर कृष्ण कभी थक जाते थे तो बैठकर उनके पैर दबाते थे, कभी उनका सिर दबाते थे। तो इस प्रकार से कैसे कृष्ण को आनंदित किया जाए यही उनका दास्य भाव से चिंतन रहता था। और साख्य रस में तो विशेष करके कभी भगवान के साथ मल्ल युद्ध करना, या जब गोचारण के लिए वन में जाते थे तो विविध प्रकार के खेल खेलते थे, कभी भगवान के साथ नृत्य करते थे, गोचारण के लिए घूमने जाते थे, अलग अलग वनों में गायों को लेकर वो घूमने जाते थे। और साथ साथ ऐसा है कि कभी कभी भगवान के संतुष्टि के लिए उनके साथ वाद विवाद भी करते थे। हालांकि भगवान को ये अच्छा नहीं लगता कि सब लोग जो ये सेवक के बातें वो जो बोले उनको हाँ जी करके बताते रहे, तो भगवान को कभी लगता है कि कोई उनको प्रतिवाद करे, वाद विवाद करे, उनसे झगड़ा करे, मगर ये जो कलह है वो प्रेम का कलह है जिसमें दोनों को आनंद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से साख्य भाव में उनसे व्यवहार करते हैं। तो जैसे अगर आप महावन में गोकुल में जाएंगे तो एक मल्ल युद्ध का स्थान है, यानी कि कृष्ण बलराम जब भी बहुत छोटे थे, नन्हे से बालक थे, तो उस समय क्या करते थे कि गोपियां जो है उन दोनों को साथ में ले आते थे और फिर उन दोनों को लड्डू दिखाते थे और लड्डू दिखाकर उनको उकसाते थे कि आप जो है एक दूसरे से कुश्ती खेलना। तो कई गोपियां जो है कृष्ण के पक्ष में रहती थी, कोई गोपियां बलराम के पक्ष में रहती थी और दोनों को जो है उत्तेजना दे जाते थे कि आप मल्ल युद्ध कीजिए और फिर लड्डू मिलेंगे, उस आशा से वो एक दूसरों से मल्ल युद्ध करते थे। और उसके बाद में जैसे एक बार है कि अगर आप जो कृष्ण जन्म का प्राकट्य स्थान है उससे एक मील दूर आप जाते तो एक ब्रह्मांड घाट आता है, तो उस ब्रह्मांड घाट में जो है जब ये सब बालक जो है मट्टी में खेल रहे थे, अचानक बाल कृष्ण जो है वो मट्टी उठा के मुंह में डालता है, तो दाम और श्रीदाम जो है वो जाकर यशोदा माई को ये वार्ता देते हैं कि आपका बेटा जो है बाल कृष्ण वो मट्टी खा रहे। तो यशोदा माई तुरंत दौड़कर उस स्थान पर आती है, फिर बलदेव को पूछते हैं कि क्या इसने सचमुच मट्टी खाई है, तो बलदेव भी उसका समर्थन करते हैं हाँ इसने मट्टी खाई है। तो फिर यशोदा माई जो है वो कन्हैया को बोलते हैं कि आप आपका मुंह खोल दीजिए, तो जैसे ही मुंह खोलता है तो उसमें अनंत ब्रह्मांड दिखाई देते हैं, अगणित जो है ब्रह्मा जी दिखते हैं, शिव जी दिखते हैं, लक्ष्मी दिखते हैं और साथ साथ वो स्वयं को भी देखती है, बालकृष्ण को भी देखती है। तो ये देखकर यशोदा माता को भ्रम होता है कि ये मैं क्या देख रही हूँ, ये किसी माया तो नहीं है, फिर अपने आँख बंद कर लेते और फिर आँख खोलते हैं तो देखते कि उनका कन्हैया जो है उसके गोद में बैठा है और फिर उनका वात्सल्य रस जो है और बढ़ने लगता है। तो उसमें ऐसे है कि वैसे देखा जाए कि कभी कभी भगवान श्री कृष्ण अपने भगवत्ता का अनुभव व्रजवासियों को कराते हैं, मगर क्या होता है कि व्रजवासी का कृष्ण के प्रति का जो भाव है उनका जो शांत है, दास्य है, वात्सल्य है, माधुर्य है, वो बढ़ जाता है। हालांकि जब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप देवकी और वसुदेव को दिखाया और उसके बाद में कुरुक्षेत्र के रणभूमि के ऊपर जब अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाया तो ये अर्जुन अपना साख्य भाव भूल गया, देवकी वसुदेव जय अपने साख्य अपना वात्सल्य भाव भूल जाते हैं और उनका ये भाव शिथिल होता है और फिर हाथ जोड़कर वो प्रार्थना करने लगते हैं। वो जानते हैं तो सर्वश्रेष्ठ भगवंत यहाँ पर प्रकट हो गए और हमें जो है वो भगवत्ता देखकर उनके प्रति आदर पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, मगर यशोदा के मन में ऐसे विचार नहीं आते, नंद महाराज के मन में ऐसे विचार नहीं आते। हालांकि वो अनुभव करते हैं कि ये अलौकिक लीला है, एक साधारण बालक ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते, मगर फिर भी उनको लगता है नहीं ये तो हमारा छोटा बालक ही है और हमारे ऊपर आश्रित है और हमें उसकी रक्षा करनी है। तो ये व्रज भाव और ये वात्सल्य भाव होता है। और उस प्रकार से जो है महावन में गोकुल में जो है कृष्ण बलराम जो है वो नंद भवन में धीरे धीरे बड़े होते रहते और जैसे थोड़े बड़े होने के बाद जब वो ग्वाल वाल के साथ बाहर खेलने जाते हैं तो खेल में इतने मग्न होते थे कि घर में वापस लौट के नहीं आते थे। जब खाना खाने का समय होता था तो सबसे पहले यशोदा माता रोहिणी को भेजते थे, तो रोहिणी जाकर उनको बुलाने का प्रयास करती थी मगर ये दोनों उनके पकड़ में आते ही नहीं थे, एक इधर भागता था तो दूसरा दूसरी जगह भाग जाता था। फिर रोहिणी वापस आती थी तो फिर स्वयं यशोदा जो है वो जाती थी और बड़े मुश्किल को दोनों को पकड़ के ले आती थी। तो उनको कभी कभी उनको बहुत डांटना पड़ता था, धार दिखाना पड़ता था। तो वहाँ पर एक हाउ बिलव करके ऐसा ही एक प्राणी का मूर्ति है कि जैसे बच्चों को कई बार डराया जाता है कि ये आएगा पुलिस आएगा नहीं तो ये आएगा, तो उसके डर से बच्चे जो है वो अच्छा व्यवहार करते हैं। तो यशोदा माता जो इस प्रकार से उसको डांटती थी कि अगर आप और शरारतें करेंगे और मस्ती करेंगे तो मैं उनको बुला लूंगी। तो एक बार कृष्ण बोलते कि आप हमको एक बार दिखाई तो सही कि कौन है वो, हम देखेंगे। तो इस प्रकार से ये वात्सल्य लीला जो है संपन्न होती थी। तो कैसे है कि तो जैसे वात्सल्य लीला में बलराम जी जो है एक बड़े भाई के रूप में आते थे, तो उस समय उनको मालूम रहता था कि ये मेरा छोटा भाई है, तो कभी समय पे लेट हो गया, समय पे नहीं आया तो उसको डांटते थे, तुमको समय पे आना चाहिए प्रसाद के लिए, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। और कभी सो जाते थे तो दाऊ जी जो है उनको उठाते थे कि अभी उठने का समय है, हो गया है, आप उठ जाइए। और जब कृष्ण का जन्मदिन है तो उसको बताते थे कि आज आप जो है गोचारण के लिए नहीं जा सकते, आप घर पे रहकर दान धर्म जो है अभिषेक है वो कर दीजिएगा। और साथ साथ कभी वात्सल्य भाव यानी कि जब वन में जाते थे और किसी प्रकार से कोई भय प्रसंग निर्माण होता था तो उस समय तुरंत बलदेव जी जो है वो एक रक्षात्मक जो रोल है, भूमिका है, वो निभाती थी। कि जैसे ही माता पिता देखते हैं कि बच्चों को कोई दुख हो रहा है या उनको कोई डेंजर है तो तुरंत उसको वो संभाल कर लेते हैं। तो उस प्रकार से बलदेव जी जो है वो वात्सल्य रस में भगवान के प्रति व्यवहार करते थे। अभी आया माधुर्य रस। अभी माधुर्य रस में कैसे है, तो एक बलदेव जी जो है वो पुरुष के वेश में है और जब भी श्री कृष्ण जो है वो गोपियों के साथ रास लीला आदि नृत्य करते हैं तो उस समय अपने बड़े भाई वहां पर उपस्थित होना ये छोटे भाई के लिए इतना अच्छा नहीं लगता है, संकोच का कारण होता है। तो इसलिए राधा रानी की जो छोटी बहन है अनंग मंजरी, उसके रूप में बलदेव जी प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से वो माधुर्य रस में भी भगवान की सहायता कर सकते हैं। तो ये अनंग मंजरी जो है वो राधा रानी के घर पे ही रहती है उनकी छोटी बहन होने के नाते, और उनका वेश जो है कि जिस प्रकार से नीले कमल जो होते हैं उस वर्ण के सुंदर सुंदर वस्त्र वो पहनती है। ललिता विशाखा जो प्रमुख गोपियां हैं उनकी वो बहुत प्रिय होती है और बहुत अलौकिक ऐसे उनका रूप सौंदर्य होता था। तो कहा जाता है कि जैसे वसंत ऋतु में जो केतकी करके जो फूल है जब वो खिलता है तो उसका जो रंग है ऐसे वर्ण ये अनंग मंजरी का होता था। तो इस प्रकार से बलदेव जी जो है वो हमेशा कृष्ण और राधा रानी के लीला में कैसे वो सहायक हो इस प्रकार से देखते थे। जैसे गोवर्धन में बहुत सारे गुफाएं थी तो उस गुफाएं में कभी भगवान बलदेव जी के साथ लीला करते थे, गोपाओं के साथ लीला करते थे, या कभी कभी राधा रानी के साथ लीला करते थे या गोपियों के साथ लीला करते थे। तो जैसे ही अगर बलदेव जी कृष्ण को मिलने जाते हैं और रास्ते में उनको अगर गोवर्धन के पत्थर सोनेरी रंग के दिखते थे तो उनको समझ में आता था कि अभी भगवान श्री कृष्ण जो है वो राधा रानी के साथ में है। और जैसे ही श्रीमती राधा रानी जाती है वन में कृष्ण को ढूंढने के लिए और जाते समय अगर वृक्ष के गोवर्धन के जो पत्थर है अगर वो सफेद कलर के दिखाई दे तो वो जान जाती है कि अभी कृष्ण जो है बलदेव जी के साथ में है। तो एक दूसरे को आदर करते हुए वो अपनी लीला को एडजस्ट करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये पांच रसों में उनको सहायता करते हैं। उस प्रकार से बलदेव जी हो सारे अवतारों के स्तोत्र माने जाते हैं। माने बलदेव जी से जो प्रथम एक चतुर्विभ प्रकट होता है उसमें शंकर्षण अनुरुद्धा प्रद्युम्न और वसुदेव होते हैं। उसके बाद में एक नारायण रूप प्रकट होता है, उसके बाद द्वितीय चतुर्भुज रूप प्रकट होता है, उसमें शंकर्षण अनुरुद्धा प्रद्युम्न और वासुदेव होते हैं। और फिर शंकर्षण जो है महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु है प्रकट होते हैं। उसके बाद में गरुड़दक्षाय विष्णु प्रकट होते हैं, शिरोदक्षाय विष्णु प्रकट होते हैं। फिर भगवान के जो लीला अवतार है जैसे कि मत्स्य अवतार है, वराह अवतार है, नरसिंह है, वामन है, राम अवतार है, ये सब प्रकट होते हैं। मगर ये सारे अवतारों का मुख्य उद्देश्य होता है कि भगवान को उनकी लीला में सहायता कर। तो इस प्रकार से बलदेव जी जो है कि हमने देखा कि किस प्रकार से आध्यात्मिक रसों में भी आध्यात्मिक जगत में विस्तार करते हैं और साथ साथ ये भौतिक जगत में भी विस्तार करते हैं कि जिससे कृष्ण की लीला और कृष्ण के जो इच्छित कार्य है वो सफल हो सके। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमको सीखना चाहिए बलदेव जी से कि बलदेव जी जो है वो गुरु के प्रतिनिधि माने जाते हैं। यानी गुरु को जो भी शक्ति प्राप्त होता है उसके स्तोत्र बलदेव जी है। तो बलदेव जी के हाथ में आपने चित्र में देखा होगा कि हल होता है और उस हल से जो है वो खेती का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी होती है जो बांसुरी बजाकर गैया को इकट्ठा करते थे। तो गैया और खेती ये दोनों जो है हमेशा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो ये बलदेव जी जो है उसके हाथ में जो हल होता है तो हल का इस्तेमाल जो होता है हमेशा जमीन को खोदने के लिए होता है कि जैसे ही जो किसान है वो जानते हैं कि जब भी हमको कुछ धान को लगाना है तो सबसे पहले जमीन को अच्छी तरह से तैयार करना पड़ता है। तो जमीन की जो खुदाई होती है वो अलग अलग प्रकार से होते हैं, अलग अलग प्रकार के हल होते हैं और मुख्य इस विषय ये होता है कि इस प्रकार से जमीन को छुटा किया जाता है कि वहाँ पर पानी और हवा का समन्वय बहुत अच्छी तरह से हो तो उसमें जो बीज डाले हैं वो अच्छी तरह से उग के आ सकते हैं। मगर भूमि के लिए ये खुदाई जो है इतनी आसान नहीं रहती है कि सारा जो है कीचड़ है, सारा भूमि जो है ऊपर से नीचे हो जाती है। तो इसलिए ये बताया जाता है कि जैसे हृदय है, अगर इस हृदय के अंदर हमको भगवान श्री कृष्ण आकर निवास करना है तो ये हृदय साफ होना चाहिए। तो इस हृदय को साफ करना है तो गुरु जो है इस हृदय को साफ करने में हमको मदद करते हैं। सो गुरु के जो शिक्षण है, उनकी जो सूचनाएं हैं, उससे हमारा हृदय जो है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार होता है कि जिसके अंदर भक्ति का लता बीज जो है बहुत अच्छी तरह से बढ़कर वो बढ़ते बढ़ते ये लता बीज जो है वो जाकर गोलोक वृंदावन में कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाए। तो हमारे हृदय के अंदर अभी क्या है, अगर आप प्रामाणिकता से आपके हृदय में संशोधन करेंगे तो आपके हृदय में आपको क्या दिखाई देगा, तो उसमें एक थोड़ा अहंकार होता है, साथ साथ भ्रम होता है और एक प्रकार का गर्व भी हृदय के अंदर होता है। किसी चीज प्राप्त करने की बहुत तीव्र अभिलाषा हृदय के अंदर होती है और जब इस अभिलाषा पूरी नहीं होती है तो हमें बहुत गुस्सा आता है और कोई भी चीज अच्छे या बुरी तरह से क्यों ना हो मगर प्राप्त करने की अभिलाषा बहुत हृदय के अंदर होती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि बलराम जी जो है वो गुरु के प्रतिनिधि है और गुरु के जो उपदेश है उस उपदेश से हमारा हृदय जो है उसमें से ये जो चीजें जो है जो भक्ति के लता बीज को बढ़ने के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। जैसे जमीन तरने के लिए जो अच्छा किसान है तो उसके अंदर के सारे तृण और सारे जो गलत चीजें जो है उसको निकाल देता है। तो उसी प्रकार से हमें गुरु के माध्यम से हमारा जो हृदय है वो भगवान श्री कृष्ण को वहां आने के लिए तैयार करना होता है। तो उसमें गुरु का जो इंस्ट्रक्शन है कि जब भी कोई संभ्रम है या जब हम लोग किसी प्रश्न का निर्णय नहीं कर सकते हैं कि ये भी कर सकते वो भी कर सकते अभी कौन सा चीज करें, तो उसमें गुरु के पास जाना आवश्यक होता है। जैसे ये बलराम जी जो है वो राम अवतार में लक्ष्मण के रूप में प्रकट होते हैं और लक्ष्मण यानी राम के छोटे अनुज होते हैं, तो छोटे भाई होने के कारण उनको बहुत कुछ सहन भी करना पड़ा और अपने बड़े भाई की बात टाल नहीं सकते थे। तो इसलिए क्या हुआ था कि बहुत बार ऐसे हुआ कि जो करना नहीं चाहते थे मगर करना पड़ रहा था, तो इसलिए उन्होंने ठान लिया कि राम अवतार में कि अगला अवतार में मैं आपके बड़े भाई के रूप में प्रकट होऊंगा, तो उसमें आपके जो चीज मुझे पसंद नहीं आएगा तो मुझे एक स्वतंत्रता होगी कि उसको मैं नहीं करूंगा। तो उसमें जो गुरु की बात है तो एक क्या होता है कि सब बचपन से ही लक्ष्मण जो है हमेशा राम की सेवा करते आए, फिर राम का विवाह होता है, सीता महारानी का राम के जीवन में प्रवेश होता है और अभी सीता महारानी को भी अपने पति की सेवा करनी है, तो अभी कैसे किया जाए, क्योंकि हर बार जो है लक्ष्मण सेवा करना चाहते थे, हालांकि 24 घंटा जो है वो प्रभु रामचंद्र की सेवा में रत रहते थे और वो एक क्षण भी उनसे अलग नहीं होना चाहते थे, मगर अभी क्या हो गया कि विवाह होने के बाद सीता महारानी का उनके जीवन में प्रवेश हो गया और वो भी भगवान की सेवा करने की अधिकारी है। तभी इन दोनों के प्रति एक प्रकार का स्पर्धा आप बोल सकते हैं या अभिलाषा थी कि कौन किस कैसे ज्यादा सेवा कर सकते। तो फिर उन दोनों जो है ये कर लगते हैं कि हम लोग वशिष्ठ के पास जाएंगे और वशिष्ठ के पास हमारी समस्या रखेंगे, दोनों भगवान राम की सेवा करना चाहते हैं तो एक कैसा नियोजन किया जाए। तो वशिष्ठ के पास जाने के बाद वशिष्ठ तो बोलते हैं तो बहुत है कि जब प्रभु रामचंद्र राजमहल में प्रवेश करेंगे तो महल के अंदर जो भी सेवा है सीता महारानी करेगी और जैसे राजमहल के बाहर कदम रखेंगे उसके बाद लक्ष्मण है उसकी सेवा कर सकते हैं। तो ये जो समझौते से दोनों खुश हो जाते हैं और दोनों को उनको सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। तो ऐसे जीवन में जो ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं कि उसमें सही निर्णय क्या है हमको समझता नहीं है, तो इसलिए जो गुरु है जो बलराम जी के कृपा से हमें ये मार्गदर्शन कर सकते हैं। और गुरु का केवल एकमात्र उपदेश होता है कि कैसे ये जीव है ये भगवान के सेवा में लग जाए। कई बार ऐसे होता है कि गुरु का जो शिक्षा है हमें समझ में नहीं आता है, मगर उनकी आंतरिक इच्छा केवल एकमात्र होती है कि कैसे इसके हृदय के अंदर के दुर्गुण नष्ट हो और भगवान के सेवा में ये अविरत सेवा करते रहे। तो इस प्रकार से जैसे प्रभुपाद है वो कभी कभी ये जो बल है, बल शब्द का अर्थ ये बताते हैं कि बुद्धि भी है, कि इस बुद्धि से हम अपने गुरु के एक प्रामाणिक सेवक बन सकते हैं। तो बल का मतलब यही नहीं कि केवल शारीरिक बल है और हम समझे कि शारीरिक बल से ही सब कुछ हो सकता है, नहीं। तो बल का अर्थ ऐसे भी है कि बुद्धि है, कि जो बुद्धि हमें कृष्ण के चरणों के प्रति ले जाए। सो बलदेव जी का एक ही जीवन मात्र का उद्देश्य होता है कि कृष्ण की सेवा करें और हर व्यक्ति को कृष्ण के सेवा में लगाए और कृष्ण के प्रति बहुत उनका प्रेम रहता है। कि जैसे कई प्रसंग ऐसे आते हैं कि कौरव और पांडवों का युद्ध होता है, तो उस समय जो है कभी कभी कौरवों को लगता है कि ये जो कृष्ण और बलराम की जो जोड़ी है जो हमेशा एक दूसरों के प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, हम दूसरों को अलग नहीं कर सकते, अगर उसमें भेद हुआ तो एक व्यक्ति हमारे पक्ष में आएगा, दूसरा व्यक्ति दूसरे के पक्ष में हो गया तो युद्ध में हम जीत सकते हैं। तो इसलिए वो कहने लगते हैं, कृष्ण के प्रति आरोप लगाते हैं, कृष्ण जो है बहुत स्वहित का ही देखते रहता है, कि हस्तानेपुर का राजा सिंहासन उनको प्राप्त करने की इच्छा होने के कारण वो इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो उस समय बलदेव जी जो है उनको जो कृष्ण है उनके व्यक्ति से बताते हैं कि आप कह रहे हैं कि हस्तानेपुर का या राजा सिंहासन का लोभ कृष्ण को है तो कैसे संभव है, यानी आपको जो भी अनंत कोटि जो ब्रह्मांड दिख रहे, इस ब्रह्मांड के जो भी अधिपति है उनके सिर के ऊपर जो मुकुट है वो मुकुट लाकर वो कृष्ण के चरणों के प्रति रखते हैं और कृष्ण के चरण की रज जो है वो अपने मुकुट के ऊपर धारण करना चाहते हैं, और साथ साथ जो भी पवित्र स्थान है, तीर्थ क्षेत्र है, हम तीर्थ क्षेत्र में क्यों जाते हैं, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र में भगवान का निवास होता है, वहां साधु संत रहते हैं, वो हमेशा हरिनाम करते रहते हैं, यज्ञ करते हैं, पवित्र कार्य करते रहते हैं, तो उस स्थान में एक विशेष शक्ति निर्माण होती है कि वहां जाने से हमारे जो आध्यात्मिक नेत्र है वो खुल सकते हैं। इसलिए भारतवर्ष में ये प्राचीन परंपरा है कि वो हमेशा तीर्थ यात्रा में जाते हैं। रूप गोस्वामी भी कहते हैं कि भक्ति के जो प्रमुख पांच अंग है, ऐसे बहुत विध अंग है मगर इतने करने के लिए अगर समय नहीं है तो कम से कम ये पांच करो, उस पांच में से एक है कि हमेशा हम तीर्थ स्थान में जाए। तो इस तीर्थ स्थान की जो पवित्रता है वो केवल कृष्ण के उपस्थिति से होता है, उनके चरण की रज तीर्थ स्थान में आने से होता है। और वो कहता है कि ब्रह्मा जी है, लक्ष्मी है, शिव जी जो है, मैं स्वयं जो है उनके चरण की रज अपने सिर पर धारण करने के लिए हम लालायित है। तो आपका कहना है कि ये शूद्र जो हस्तनापुर का राज सिंहासन है वो चाहते हैं, तो आपका ये पूरी तरह से भ्रम है। तो ये भ्रम है उसका नष्ट करने का कार्य जो है बलराम जी हमेशा करते रहते हैं। और साथ साथ मुख्य हम देखते कि जब ये कौरव पांडवों का युद्ध का प्रसंग होता है, अभी बलदेव जी उनके हृदय के अंदर दुर्योधन के प्रति भी स्नेह रहता है, पांडवों के प्रति भी स्नेह रहता है, युधिष्ठिर महाराज के प्रति भी स्नेह रहता है, तभी इस युद्ध में किसके पक्ष में जाए, तो उनको लगता है कि चलो मैं तीर्थ स्थान चला जाऊंगा, तो फिर तीर्थ स्थान में चले जाते हैं। तो तीर्थ स्थान में क्या होता है, वो जाते हैं अलग अलग भारत के तीर्थ क्षेत्र में वो जाते हैं, और जाते जाते अपने तीर्थ यात्रा के दौरान वो नैमिषारण्य पहुंचते हैं। जैसे नैमिषारण्य पहुंचते हैं वहां एक ऋषियों की सभा होती है, उस सभा में जैसे ही बलदेव जी प्रकट होते हैं कि सारे उपस्थित संतगण जो है ऋषि मुनि है वो बलदेव जी को आदर व्यक्त करने के लिए अपने स्थान से उठते हैं, उनकी प्रशंसा करके स्तुति करके उनका स्वागत करते हैं। मगर वहां पर उपस्थित जो रोमहर्षण है वो अपने स्थान से नहीं उठते हैं, वो व्यासासन के ऊपर बैठे रहते हैं और बलदेव जी को किसी भी प्रकार से स्वागत नहीं करते, उनका जो है सम्मान नहीं करते हैं। तो जैसे ही बलदेव जी ये देखते हैं तो इससे उनको क्रोध होता है और फिर कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये व्यासदेव का शिष्य है, इसने सारे शास्त्र पढ़े हैं, सारे इतिहास पढ़ा है, मगर ये पढ़ने के बावजूद हृदय के अंदर सद्गुण निर्माण होना चाहिए मगर कोई सद्गुण इसके हृदय के अंदर नहीं है, इस व्यक्ति का मन नियंत्रित नहीं है। और साथ साथ अगर कोई व्यक्ति के पास ज्ञान है मगर नम्रता नहीं है, सद्गुण नहीं है, तो वो ज्ञान है उसके लिए और समाज के लिए विघातक ही होता है। तो हम देखते हैं कि जो समाजद्रोही व्यक्ति है उनके पास भी ज्ञान होता है, वो भी बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं, मगर इस ज्ञान जो है विघातक कार्यों के लिए हो जाता है। तो उसमें बताते हैं कि अगर इसके पास कोई भी सद्गुण नहीं है, तो अगर सद्गुण हमारे अध्ययन के बाद प्रकट नहीं होते तो हमारा अध्ययन जो है वो किसी काम का नहीं रहता है, उस अध्ययन जो है हमें डुबा ही देगा। तो कहता है कि जैसे हम देखते हैं कि बहुत समय जो है हम नाटिका सादर करते हैं, तो नाटिका में बहुत नट जो है वो अभिनय करते हैं, तो उस अभिनय में जो है वो बहुत अच्छा एक भूमिका सादर करेंगे कि उसमें देखेंगे कि वो बहुत दयालु व्यक्ति है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है और बहुत अच्छा व्यवहार करता है, मगर वो केवल क्या है कि वो जो एक घंटे का जो नाटिका है उस समय तक वो वैसे व्यवहार करेगा, जैसे ही नाटिका समाप्त होगी उसका व्यवहार जो है विपरीत हो सकता है। तो उसी प्रकार से बलदेव जी कहते हैं कि जैसे नाटक में एक संवाद होते हैं, तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है संवाद कर रहा है और ये एक नट के तरह से व्यासन के बैठकर प्रवचन कर रहा है। तो इसलिए हमको ये जानना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अभी किसी को लगेगा ये क्या है कि बलदेव जी आए, ये तो सिर्फ व्यासन के ऊपर बैठे थे और बलदेव जी को क्रोध आया। अभी जैसे बलदेव जी को क्रोध आता है, वैसे कहा जाता है कि राजा के पास ज्यादा कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि राजा को क्रोध आएगा तो कभी भी अपना सिर कटवा सकता है। तो बलदेव जी जो है वो तो इतने महान है, और उनको जब भी क्रोध आता है तो उसको कौन रोक पाएगा। और फिर वो क्या करते हैं, केवल एक कुशाग्रास जो एक गवत घास होता है वो एक तिनका लेते हैं और उसको स्पर्श करते हैं और उसके प्राण जो है निकल जाते हैं। तो ऋषि मुनि जो है उनको बहुत दुख होता है कि अरे इतने तीर्थ क्षेत्र में ऐसे प्रसंग के ऊपर ये हमारा जो भागवत का वक्ता है उसका ही देहांत हो गया। तो उस समय फिर वो हाहाकार करते हैं, फिर बलदेव जी को विनंती करते हैं कि हमने तो इसको बहुत आयु होगा इसे वरदान दिया था, और हम ये भी नहीं चाहते कि आप उसको फिर से जीवित कीजिए, मगर ऐसा भी देखिए कि हमारा जो वरदान है वो भी साबित रह सके। तो बलदेव जी कहते हैं कि पिता जो है अपने पुत्र के रूप से जो है कार्य करते रहता है, तो इनका जो पुत्र है वो पुत्र जो सुखदेव गोस्वामी सुत गोस्वामी जो है वो रहेंगे, और सुत गोस्वामी जो है आपको भागवत कथा अच्छे तरह से करेंगे और सारे वरदान जो है उनको प्राप्त होंगे। और उसके बाद में बलदेव जी जो है बहुत अत्यंत नम्रतापूर्वक ये भी कहते हैं कि मेरे हाथ से एक ब्रह्महत्या हो गई है, तो चाहे तो मैं प्रायश्चित लेता हूँ और आप मुझे प्रायश्चित बता सकते हैं, और प्रायश्चित लेने के लिए वो तीर्थ यात्रा चले जाते हैं। तो इसे हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि ये एक साधारण कृति थी कि वो कोई सम्मान नहीं किया, मगर भगवान जो है हृदय के अंदर स्थित होने के कारण वो जानते हैं कि इस व्यक्ति के हृदय के अंदर क्या भावनाएं हैं, क्या उसका उद्देश्य है। तो इसलिए बहुत ही एक छोटी कृति है, मगर भगवान की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा अपराध है। अब बलदेव जी कहते हैं कि मेरा प्राकट्य का यही एक उद्देश्य है कि जो व्यक्ति ढोंगी है मगर एक संत का व्यवहार कर रहा है, ऐसे लोगों का विनाश करे ताकि सत्य की स्थापना हो सके। तो इसलिए हमको ये ध्यान में रखना है कि कैसे हम आध्यात्मिक जीवन में यशस्वी हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए, तो हमको गुरु की कृपा होनी चाहिए, गुरु के आदेश होना चाहिए, और गुरु के आदेश के अनुसार हम जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, और साथ साथ हमारा व्यवहार एक वैष्णव के तरह से अच्छी तरह से होने का प्रयास करना चाहिए, और उसके साथ में अपना एक वैयक्तिक जो अनुभव है जिसको रियलाइजेशन कहते हैं, ये भी अनुभव होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हमने जो साधना गुरु ने बताई अगर वो साधना हम लोग नहीं करेंगे तो हमको अनुभव नहीं आएगा, और हम जो कहेंगे तो हमारे शब्द में वो पोटेंशियल नहीं आएगी, और साथ साथ हम भी केवल एक नट के तरह व्यवहार हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बलराम जी जो है यहाँ पर वो उनका अवतार लेने का उद्देश्य कि दुर्जनों का विनाश करना वो भी करते हैं। तो साथ साथ हमने देखा कि आज अभी तक जो हम चर्चा कर रहे थे, तो सबसे पहले हमने देखा कि बलराम जी से दो चीजें हम सीख सकते हैं। एक है कि सर्विटोर, यानी हमेशा वो कृष्ण की सेवा में रत है, और दूसरा है नम्रता। हालांकि उनके पास कृष्ण के इतना ही शक्तियां है, फिर भी नम्रता पूर्वक वो कृष्ण की सेवा में हमेशा रत रहते हैं, हालांकि वहां के उपस्थित जो साधु संत हैं उनका भी सम्मान करते हैं। तो इस प्रकार से, और कृष्ण के जो भी योजना है, कृष्ण की जो भी इच्छा है, वो इच्छा पूरे करने का वो हमेशा प्रयास करते हैं। जैसे उनकी तीर्थ यात्रा समाप्त होती है और क्या होता है, उसी समय कुरुक्षेत्र का युद्ध अंतिम चरण में होता है और भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध प्रारंभ होता है, और उसी समय जो है बलराम जी वहां उपस्थित होते हैं, और उनके उपस्थिति से सारे पांडव और कृष्ण भी जो है संकोचित होते हैं कि जिस समय नहीं चाहे उसी समय ये प्रकट हो गए, क्योंकि वो चाहते थे कि वो शायद युद्ध को रोकना चाहेंगे, और वही वो करने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि ये युद्ध जो है निर्णायक नहीं हो सकता, अगर आप युद्ध शास्त्र के नियमों के अनुसार युद्ध करते हैं तो ये युद्ध निर्णायक नहीं हो सकता है, और आप युद्ध मत कीजिए। मगर कृष्ण चाहते हैं कि ये जो दुर्योधन नहीं, ये तो सब ये उत्पत्ति का ये सब जो इतना संहार हुआ इस संहार का कारण है, और इसका वध तो होना ही चाहिए। तो उस समय न तो दुर्योधन बलदेव जी की बात सुनता है, न तो भीम बलदेव जी की बात सुनते हैं। तो उस समय ये अभी देव की इच्छा है, कृष्ण की इच्छा है, और उसमें सहायता करने के उद्देश्य से बलदेव जी वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। हालांकि बलदेव जी का एक योजना थी कि ये युद्ध न हो, ताकि कौरवों का कम से कम एक तो वंशज जिंदा रहेगा, और पांडव जो है वो तो सारा राज्य तो उन्हें प्राप्त होगा ही, तो उनकी वो सोच थी। मगर कृष्ण की सोच क्या थी कि नहीं, सारे असुर जो है नष्ट होना चाहिए, दुर्योधन सहित ये कुरु वंश नष्ट होना चाहिए, क्योंकि मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि अगर पांडव इनकी हत्या नहीं करते तो मैं स्वयं इनकी हत्या करूंगा, मगर मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो इस प्रकार से बहुत बार जो है एक साधक की बहुत सारी योजनाएं रहते हैं, हमको लगता है कि हम इस प्रकार से कार्य करेंगे, इस प्रकार से व्यवहार करेंगे, मगर एक कृष्ण की इच्छा अलग होती है, गुरु की इच्छा अलग होती है। तो अगर हृदय के अंदर नम्रता है तो हम हमारे योजना छोड़ देंगे, और हृदय के अंदर गर्व है तो हम हमारे योजना के ऊपर अड़े रहते हैं, डटे रहेंगे, और फिर अन्य वैष्णवों के साथ, गुरु के साथ या भगवान के साथ भी हम लोग विवाद करते हैं कि ये चीज ऐसे नहीं, इसी प्रकार से होना चाहिए, और इसी प्रकार से करते तो यशस्वी होंगे। तो इस प्रकार से बलदेव जी जो है ये नम्रता पूर्वक दिखा रहे हैं कि अभी ये कृष्ण की इच्छा है कि ये सब नष्ट होना चाहिए, तो ठीक है मैं यहां से चुपचाप मुंह बंद करके तीर्थ यात्रा फिर से प्रारंभ करता हूं, और वहां से निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर नम्रता हृदय में है तो अपना निर्णय हम लोग बदल सकते हैं, यानी लौचिकता जो हृदय के अंदर लौचिकता होती है, यानी हम लौचिकता यानी फ्लेक्सिबिलिटी, कि जैसे हम दूसरों की बात मान लेते हैं, मगर अगर हृदय के अंदर गर्व है तो क्या होता है कि वो व्यक्ति रिजिड यानी कभी भी बदलता नहीं। यानी दुर्योधन है, रावण है, उनको ढेर भर के शाप मिलते, इतने सारे साधु संतों ने बताया था कि तुम्हारा विनाश होगा, मगर क्या है कि इनर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हृदय के अंदर गर्व होने के कारण वो अपना निर्णय बदल नहीं सके, क्योंकि वो समझते थे कि मेरा ही बुद्धि श्रेष्ठ है और मैं सोचता हूं इसी प्रकार से यश प्राप्त होगा, मगर ऐसे नहीं होता है। और क्या होता है, इस प्रकार से हम हमेशा एक भौतिक दुनिया में एक संघर्ष में रहते हैं और हमेशा जो है दुख रहता है। जैसे भागवत है वो बताते हैं कि ये भौतिक दुनिया यानी दुख का सागर है। तो कैसे है कि कितने भी हम यशस्वी हो जाए हम उसमें आनंदित नहीं रहते। जैसे कि ये ओलंपिक एक खेल है तो सारे दुनिया के जो खिलाड़ी है उस ओलंपिक में गोल्ड प्राप्त करने के पीछे जो है बहुत कड़ी तपस्या करते हैं, कई साल तक वो मेहनत करने के बाद उनको कोई पद हासिल होता है। तो उसमें जो स्टडी किया उसमें उन लोगों ने देखा है कि जो सिल्वर जिसको मेडल मिलता है रौप्य पदक मिलता है वो व्यक्ति बहुत दुखी होता है, मगर उसके तुलना जिसको ब्रॉन्ज मिलता है वो आनंदित होता है, कि वो सोचता था कि तो ये गोल्ड मिलना मुश्किल था, कम से कम इतना तो मिल गया। और जो सिल्वर वाला है वो हमेशा सोचते रहता है कि काश थोड़ा सा प्रयास करता था तो मैं जीत जाता, तो सिल्वर मेडल मिलने के बाद भी वो बहुत दुखी रहता है। तो उसी प्रकार से जब भी ये जो हृदय के अंदर की जो आकांक्षा है वो हमको हमेशा दुखी रहेगी इस दुनिया में। तो इसलिए क्या है कि अगर हम कृष्ण का योजना कृष्ण के इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं तो इस प्रकार के दुख में हम लोग नहीं रह सकते। तो इसलिए हम देखते हैं कि इस भौतिक दुनिया में हम आए तो तीन चीज हो सकते हैं। एक है कि मतलब हमारा जो उद्दिष्ट है कि एक तो भगवान की सेवा करके हम भगवत धाम जाएंगे, या हम लोग इस दुनिया में रह के हमारे ही मौज मस्ती करके रहेंगे, और तीसरा जो है हमारा विनाश होगा, कि मृत्यु जो अटल है मृत्यु के मतलब कोई टाल नहीं सकता है। तो इस प्रकार से ये जो मानवीय शरीर है वो भगवान के चरणों के प्रति हम सेवा के रूप में अर्पित कर सकते हैं या हम इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं और अंत में वो नष्ट ही हो जाएगा। तो इसलिए जो व्यक्ति भगवान के सेवा में अपने शरीर को अर्पित करता है वह व्यक्ति ही जीवन में असली जो है समाधान को प्राप्त कर सकता है, और ये जो शिक्षा है हम बलदेव जी से समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमेशा एक प्रभुपाद एक उदाहरण दिया करते थे कि पोस्ट मास्टर का, आजकल ज्यादा पोस्टमैन दिखते नहीं है, हालांकि धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, मगर एक जमाने जब भी पोस्टमैन रहते थे तो वो क्या करते थे कि उस जमाने में मनी ऑर्डर्स रहते थे कि लड़का कहीं काम करता था अपने माता पिता को या दोस्त लोग को कुछ मनी ऑर्डर्स भेजता था, और फिर ये पोस्टमैन जो है उसके थैले के अंदर बहुत सारा मनी ऑर्डर्स रहा करता था और घर घर जाके जो है उसको बांटता था, मगर आंतरिक उसको मालूम था कि मेरे खिसे में जो है थैली में इतना सारा पैसे का चेक्स है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से साधक को यह समझना चाहिए कि मेरे पास जो भी गुण है, जो भी कौशल्य है, जो भी कलाएं हैं, वो मेरे नहीं है, वो तो कृष्ण के सेवा में लगाना है। तो इस प्रकार से हमको ये आंतरिक रूप से जानना है कि जैसे पोस्टमैन समझता है कि मैं तो एक दृश्य से भिखारी हूं, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, जो है वो बाकी लोगों का है, उसी प्रकार से मेरे कलाएं क्षमताएं है बुद्धि जो भी है बल है वो सारा कृष्ण से प्राप्त हुआ है और उनके सेवा में हमको लगाना है। अरे ये जो बलदेव जी जो है एक धनुकासुर का वध करते हैं, प्लंबासुर का वध करते हैं, तो आचार्य बताया कि धनुकासुर जो है यानी वो गधे के रूप में रहता था और कभी भी जो है तालवन में रहकर तो स्वयं उस वृक्ष के फल की रक्षा करता था और किसी को वो फल खाने नहीं देता था, हालांकि खुद भी नहीं खाता था और दूसरे को भी खाने नहीं देता था। तो इस प्रकार से जैसे अज्ञानी व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति को जानता नहीं कि ये शरीर नहीं है आत्मा है और आत्मा मौल्यवान है और ये मानवीय शरीर मौल्यवान है, ये ज्ञान उसको नहीं होता है और वो भौतिक बुद्धि से ही सब कुछ देखना चाहता है। और प्रलम्बासुर जैसे एक व्यक्ति है कि वो गोप बालक के रूप में आकर बलराम जी को वध करने का प्रयास करते हैं और बलराम जी जो है उसका वध करते हैं। तो बताया जाता है कि किस प्रकार से एक मैथुन के प्रति आकर्षण है या पूजा लाभ प्रतिष्ठा के प्रति आकर्षण है, इसके प्रलम्बासुर प्रतीक है। तो हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर वो कहते थे कि हृदय के अंदर इस प्रकार से अज्ञान रहेगा और साथ साथ एक आकर्षण रहेगा इंद्रिय तृप्ति करने का और पूजा लाभ प्रतिष्ठा की बहुत अपेक्षा रहेगी। इनको दूर करने के लिए साधक को स्वयं प्रयत्न करना पड़ता है और ये प्रयत्न गुरु के मार्गदर्शन से और उनके शिक्षा से हो सकता है। तो साधक कितना प्रामाणिकता से उत्साह से गुरु के आदेश का पालन कर सकता है उससे उसकी आध्यात्मिक जीवन का यश निर्भर रहता है। तो आज के दिन पे हम जो कुछ संदेश अपने हृदय में रखना चाहेंगे तो उसमें है कि जो बलदेव जी जो है हमें क्या शिक्षा प्रदान करते हैं। उन्होंने तो अनंत लीला की है, इस अनंत लीला में का एक ही उद्देश्य मुख्य है कि इतनी सारी अलौकिक शक्तियां होने के बावजूद वो केवल भगवान के सेवा में ही आनंदित रहना चाहते थे। और साथ साथ जिस व्यक्ति के पास इतना क्षमता है वह व्यक्ति का हृदय जो है हमेशा गर्विष्ठ रहता है और बलदेव जो है अत्यंत नम्रता पूर्वक व्यवहार करते थे। तो आज के इस शुभ अवसर पे आप सब लोग जो है इस बहुत सुंदर महोत्सव में आप शामिल हो गए हैं। तो उस महोत्सव में सबसे महत्वपूर्ण हमको यही शिक्षा है कि किस प्रकार से हमारा सारा जीवन कृष्ण और गुरु के सेवा में रहे और हृदय के अंदर हमेशा नम्रता रहे। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम अभी आगे जो है हमारा प्रोग्राम चालू रखेंगे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। अभी आरती में भाग ले सकते हैं। आरती के पश्चात आप लोग सब लोग ललिता भवन में प्रसाद के लिए जा सकते हैं। ऑलरेडी प्रसादम सर्विंग चालू हो चुके हैं। हरे कृष्णा।
पदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमः। विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे